मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं अर्कनाथ त्रिपाठी, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन, आप गरुलिया पश्चिम बंगाल से हैं, सत्यम अग्रवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, चंचल कुमार आपका गांव है रत्तेवाली जिला पंचकुला हरियाणा से हैं, लक्ष्मण गुर्जर विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, श्रुति रावत भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और कृष्ण कुमार रावत आप भी भोपाल मध्य प्रदेश से ही हैं। तो अर्कनाथ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सत्यम, चंचल, लक्ष्मण, श्रुति और कृष्ण कुमार आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में दावोस सम्मेलन पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और खबरों से पहले मैं एक छोटी सी सूचना आप सबको देना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जो अब 3 मार्च के क्लासेस के लिए आने वाले हैं। मुझे एक दो दिन से कुछ मेल मिल रहे हैं और उसमें स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि सर क्लासेस कब शुरू होंगी और आखिरी क्लास कब खत्म होगी। बट नेचुरल है कि ताकि उन्हें रिजर्वेशन कराने में आसानी हो, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होगा भोपाल पहुंचने का और भोपाल से ट्रेन वापसी की ट्रेन मिलने का। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें कि पहले यानी कि 3 मार्च को पहले दिन, केवल पहले दिन जो क्लास शुरू हम करते हैं वो 1 घंटे देरी से करते हैं। जनरली क्लास शुरू होंगी रोजाना 10 बजे, लेकिन पहले दिन चूंकि स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को ट्रेन टाइम और बस टाइम उस तरह से सूट नहीं करती है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो हम लोग अब पहले दिन 11 बजे क्लास शुरू करते हैं, 11 o'clock। और जो लास्ट डे की क्लास होती है, लास्ट डे यानी कि 17 मार्च की क्लासेस, तो जो स्टडी की क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स वो 5 बजे शाम तक होती है। सामान्य तौर पर क्लासेस 6 बजे तक लगती हैं, कभी कभी 6 से देरी भी हो जाती है लास्ट क्लास होने के कारण, 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। लेकिन जो लास्ट डे होगा उस दिन क्लासेस 5 बजे तक होंगी और इसके बाद 1 घंटे के लिए हम लोग आप कह लीजिए कि एक प्रकार से फेयरवेल के रूप में 1 घंटे का समय रखते हैं, तो उसमें स्टूडेंट जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में भी कुछ स्टूडेंट्स के ट्रेन का टाइम होता है या बसेस का टाइम होता है, क्योंकि उन्हें अदरवाइज फिर काफी समय तक रुकना पड़ता है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स को मनाही नहीं होती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका कोई भी समय यहां आने के बाद व्यर्थ जाने न पाए, यहां के समय का आप सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले दिन 11 बजे से क्लासेस शुरू होंगी और लास्ट डे 5 बजे समाप्त हो जाएंगी। तो इसको आधार बनाकर आप सब अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं मुख्य विषय से पहले। आपने न्यूज में सुना खासकर युवा प्रवासी भारतीय दिवस की खबर को लेकर। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसके बाद युवा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि इसे मैं मुख्य विषय के रूप में लूं, इस पर मैं आज आपसे ज्यादा चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। अभी तो शुरुआत हुई है सम्मेलन के, कुछ और तथ्य हमारे सामने आएंगे। और एक तो साल पहले मेंस में बकायदे इस पर, युवा प्रवासी पर तो नहीं लेकिन प्रवासियों को लेकर के बकायदे मेंस में क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो हम लोग थोड़ी सी इस पर डिटेल में बात करेंगे कल या परसों जैसी भी स्थिति होगी। लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट घटना भारत में घटित हो रही है और आप लोगों को बकायदे इस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी खबर, आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में सुनी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम हिंदी में कहते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान है, फाइनेंशियल आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें IMF ने कहा है कि जो भारत है वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब उसने चीन को भी लगभग लगभग पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ देगी। और इस साल उसने कैलकुलेट किया है कि शायद 7.5 19-20 की जो गति होगी, 7.5% की दर से वृद्धि होगी और 2020 में ये 7.7 तक पहुंच सकती है। चाइना लगभग लगभग 6.2% पर आ गया है और ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि भारत बहुत जल्दी विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पांच को आपको जानने की जरूरत नहीं है, पांचवें पैर अभी फिलहाल ब्रिटेन है आप कह लीजिए, लेकिन जो विश्व की तीसरी जो तीन जो सबसे बड़ी व्यवस्थाएं तीन, उसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है जापान। आईएमएफ ने जो रीजन दिए हैं, तो दो रीजन दिए हैं। पहला जो रीजन दिया है वो है तेल की कीमतों को लेकर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चूंकि कम है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी। इस पर आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हैं या स्थिर हैं तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी, क्या मतलब हुआ? उसका संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी के साथ विकसित होने से क्या है? इसके बारे में आप लोग अपने ढंग से विचार कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने इससे पहले कई बार बातें की हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब कम से कम आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो चुकी हो कि आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर फटाक से दे दें, यानी कि बहुत ज्यादा आपको दिमागी कसरत करनी पड़ रही है, बिल्कुल फटाक से आपके दिमाग में इनके उत्तर आ जाएं। तो इसे थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी दावोस में जो सम्मेलन शुरू हुआ है मुख्य विषय के तहत हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी जो एक संस्था है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, उसमें आपको अपनी जरूरत की चीजें छांटने में दिक्कत भी डेफिनेटली होगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो सूचना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा और ये आपके मेंस में काम भी आ सकता है और ये डेटा आपको नोट कर लेना चाहिए। और वो ये कि भारत में, सोचिए भारत में जो 1% अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, 1% जो धनी लोग हैं उनकी जो संपत्ति है वो 39% बढ़ी है। सोचिए कि एक साल में 39% संपत्ति बढ़ जाना, चलिए आप इसको एक बार किनारे भी कर दीजिए, है नहीं? क्योंकि जब हम ज्यादा डेटा के चक्कर में पड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर हमारे दिमाग में उथल पुथल होने लगती है, हम सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मैं आपको इससे भी बेहतर एक फाइनल डेटा बताता हूं। कहा गया है कि भारत के जो सबसे टॉप के जो 9 धनी व्यक्ति हैं, 9 अमीर लोग हैं, 9 अमीर, सोचिए कि 9 व्यक्ति केवल, उनके पास भारत की जितनी संपत्ति है उसका 50% है। 50% मतलब देश की कुल संपत्ति का 50% भाग सिर्फ 9 भारत के धनी व्यक्तियों के पास है और रिमेनिंग जो 50% है, सोचिए कि उसमें 99% पॉपुलेशन शामिल है। मित्रों, इसको आप सीधे सीधे ऐसे मत देखिएगा कि ये कोई शोषण की कहानी कही जा रही है या इसको आप भले अलग रूप में लेने लगे कि कोई अपराध हो रहा है, इसको आधार बना करके आप बहुत सी चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण इस मायने में कि हमने समाजवादी समाज की संकल्पना की है तो संपत्तियों का इस तरह से केंद्रीकरण होता चला जा रहा है तो वो समाजवादी हमारी व्यवस्था कहां गई। फिर आप 1990 को एक आप कह लीजिए कि बीच में ला करके कि 1990 के पहले धन का कितना केंद्रीकरण होता था और 1990 के बाद उदारीकरण की शुरुआत की गई और उदारीकरण की जब शुरुआत की गई थी तो ये बात बहुत अच्छे से कही जाती थी कि इससे गरीबों का भला होगा, जो गरीब देश हैं उनके उनका उद्धार होगा, वो बहुत तेजी से विकसित होंगे। तो इसके 1990 के बाद इसके जो परिणाम आने चाहिए, सकारात्मक परिणाम आने चाहिए, वो सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये देखा जा रहा है कि 1990 के बाद से जो धनी वर्ग था वो और धनी होता चला जा रहा है और जो गरीब वर्ग है वो उसके जीवन में कोई बहुत सुधार नहीं आ रहा है। हाँ, जो मध्यम वर्ग है उनका जीवन स्तर जरूर थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये जो एक आंकड़ा है ये इस मायने में आपकी मदद करेगा। और 3-4 साल पहले इसी को बेस बना करके मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मित्रों, मैं उस आंकड़े को रिपीट कर रहा हूं, आप अखबारों में भी देख सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। और वो ये है कि भारत के जो टॉप के 9 धनी व्यक्ति हैं, उनके पास देश की 50% के बराबर संपत्ति है, 50% संपत्ति। और जब हम बड़े लोगों के टॉप के 9 लोगों के नाम लेते हैं तो बट नेचुरल है उसमें मुकेश अंबानी जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, लक्ष्मी मित्तल हैं, हिंदुजा ब्रदर्स हैं, पालोन जी मिस्त्री हैं, शिव नाडार हैं, गोदरेज फैमिली है, दिलीप संघवी हैं, बिरला में कुमार बिरला जी हैं। ये कुछ नाम है जो टॉप धनी लोगों के नाम हैं। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक आर्टिकल डाला गया है, स्थानों का नाम परिवर्तन कितना सार्थक। आप देख रहे हैं कि लगातार स्थानों के नाम बदले जाने की कवायद शुरू हो गई है, अभी प्रयागराज और इन सबके नाम बदले गए हैं। तो इस पर कृष्ण कुमार जी का लेख है, और कृष्ण कुमार भारत के बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, वो लेख आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेंस में, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा एक मामला सा है, या कह लीजिए इस पर बहस भी छिड़ी है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, तो एक शिक्षित नागरिक के रूप में आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हो सकता है कि इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछ भी लिए जाएं तो बेहतर होगा कि आप जरूर इस आर्टिकल को पढ़ें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं दावोस सम्मेलन पर। इसके बारे में कुछ मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं। पहला तो यह फ्रेंड्स कि एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसकी स्थापना की गई थी बेसिकली, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई न तो सरकारी तंत्र इसमें शामिल है और न इस ये कोई लाभकारी संस्था है, और स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल इसकी बैठक होती है, और 2015 के बाद जो इसकी बैठकें हैं वो बहुत अहम होने लगी हैं। जो इसका टाइटल, उसका जो आदर्श वाक्य है, इस आदर्श वाक्य में देखिए कि क्या कह रहे हैं वो, तो आपको इसका पूरा का पूरा चरित्र पता लग जाएगा। इनका आदर्श वाक्य है कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध है, किसके प्रति प्रतिबद्ध है, टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की जो स्थिति है उसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जाए, उसमें किस तरीके से इजाफा किया जाए, इसके प्रति यह संस्था कमिटेड है। वैसे आगे इस आगे भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस हिस्से को उन्होंने मोटो के रूप में लिया है अपने, अदरवाइज पूरा वाक्य है कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय, कैसे करेंगे फिर, कैसे अपने काम को अंजाम देंगे, बाय एंगेजिंग यानी कि किन किन लोगों को शामिल कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, बिजनेसमैन को, पॉलिटिकल लीडर्स को, एकेडमिशियन को, एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। यानी कि देश के जो बहुत ही प्रमुख वर्ग में जो लोग आते हैं, चाहे वो उद्योग क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो शिक्षा एकेडमिक विचारक क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, व्यवसायी हों, इन सारे लीडर्स को एक फोरम पर ला करके उनका सम्मेलन कराया जाए, उनको आमने सामने बैठा करके बातचीत कराई जाए, और बातचीत कराने के बाद कुछ ऐसे एजेंडा तैयार किए जाएं, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसी कोशिशें सामने लाई जाएं ताकि दुनिया की स्थिति बेहतर हो सके। ये इसका आप कह लीजिए कि पूरी तरह से पर्पस है, विश्व की स्थिति को बेहतर बनाना, और किस तरीके से बेहतर बनाना उसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की है। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी कुछ उससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो पूर्वी आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां ये स्थान है दावोस, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन दुनिया के लीडर्स लगभग 2,500-3,000 लीडर्स अलग अलग क्षेत्र के वहां जाते हैं और बकायदे वो बातचीत करते हैं। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, और देखिए कि इस सम्मेलन में अभी और क्या चीजें निकल करके आती हैं, किस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। उस इस बीच में आप देखेंगे कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपनी मांग वहां जाकर के सामने रखते हैं और यहां तक कि प्रदर्शन भी करते हैं। जैसे एक बच्चों का ग्रुप गया है, स्कूल बच्चों का ग्रुप, और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमको इसी पृथ्वी पर रहना है, हमको प्लान बी नहीं चाहिए। प्लान बी का मतलब है कि इस धरती को छोड़कर के किसी और ग्रह में रहने का इंतजाम किया जाए। नो नो, वी डोंट नीड प्लान बी, हमको तो इसी धरती पर रहना है। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कीजिए, आप सब वर्ल्ड लीडर हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से संस्थाएं आती हैं, बहुत से एनजीओज आते हैं जो प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और उन पर ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं विचार करते हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को काफी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं: अशोक कुमार दारा, हिमांशु सिंह, आलोक कुमार बिहार से, चांदनी मिश्रा सुंदरनगर से, नीतीश कुमार बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, अंकित कुमार सचान और मुलायम सिंह प्रयागराज से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।